हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम क्लास ऑन थर्ड कैंटो नाइन्थ चैप्टर वर्स नंबर 23 गिवन ऑन 27 अक्टूबर 2015 इन फरीदाबाद टेंपल बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
श्लोक है, इसके अंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरे जो है जो सृष्टा, मतलब मैंने सृष्टि की रचना करी है, सृष्टा होने की जो मिथ्या प्रतिष्ठा है इसको मैं त्यागना चाहता हूँ। हम कोई छोटा सा काम करते हैं तो उसके लिए भी हम क्रेडिट चाहते हैं, ये मैंने किया, आई एम द डूअर, कोई छोटा सा काम। और अगर गलती से कोई नाम नहीं बताता कि ये सेवा प्रभु जी ने की है या इन्होंने की है, तो बहुत अंदर से गिल्टी फीलिंग होता है कि क्यों किया मैंने, जब नाम ही नहीं मिला किया क्यों। तो ब्रह्मा जी वहां पर हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करने के बाद भी मिथ्या प्रतिष्ठा, इस मिथ्या अहंकार से कि मैं करता हूँ, हमको इससे दूर रहना चाहिए। तो जिस तरह से वेद व्यास जी ने इतने सारे पुराणों की रचना करी, वैसे तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हर द्वापर के अंत में आते हैं, लेकिन कृष्ण द्वापर व्यास जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में वेदों का वर्णन करते हैं वो सिर्फ इसी युग में आते हैं, इस चतुर्युग के अंदर आते हैं। तो हम भाग्यशाली है कि 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी कृष्ण द्वापर व्यास उन्होंने आकर 18 पुराणों की रचना करी और इतना अनमोल ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण हमको दिया। इस प्रकार से बताते हैं कि 18 पुराण में कई लोग पूछते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि आप लोग वो पुराण क्यों नहीं पढ़ते, ये पुराण क्यों नहीं पढ़ते। तो उसे बताते हैं कि 18 पुराणों को भी विभाजित किया गया है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अंदर। तो 6 पुराण 6-6 करके डिवाइड किया गया है, 6 पुराण तमोगुणीय, 6 पुराण सत्वगुणीय, 6 पुराण रजोगुणीय। तो तामस पुराण के जो है, तामसिक पुराण जो है उसके अंदर आते हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और एक और पुराण बताया गया था उसमें आता है अग्नि पुराण। और राजस पुराण के अंदर राजसी पुराण जो है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण, तो इस तरह से 6 है। लेकिन सत्वगुणी जो है उसमें आते हैं विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य जो है उन्होंने ज्यादातर भागवत पुराण और पद्म पुराण को लेकर और सारी की सारी फिलोसफी का वर्णन किया। अब जैसे कार्तिक मास अभी शुरू हो रहा है आज से, शरद पूर्णिमा से, तो इसमें भी ज्यादातर चीजें जो है वो पद्म पुराण से ली गई है, जैसे कि हमारा दामोदर अष्टकम असतवत मुनि द्वारा रचित, वो भी किस में से आता है, पद्म पुराण से आता है। तो इस तरह से पद्म पुराण और ये जो अनमोल ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, 18वां पुराण जिसको वेदव्यास जी ने लिखा, सत्वगुणी पुराण है। और जो लोग नहीं पढ़ते वो क्लेम करते हैं शिव पुराण पढ़ा है, वो तामस पुराण से हमें कंपेयर करते हैं, ये जो सबसे अनमोल ग्रंथ है तामलम पुराण श्रीमद् भागवतम पुराण का कंपैरिजन करते हैं। तो हमें उनको ये चीज बतानी चाहिए कि ये पुराण जो है वो इस प्रकार से डिफरेंट है। और नारद मुनि के कहने पर वेदव्यास जी ने ये आखिरी पुराण लिखा जो उनको आनंद प्रदान करता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी आनंद प्रदान करता है। तो इस तरह से ये जो भागवत पुराण है इसका वर्णन इसमें करते हुए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम लोग एक सेमिनार करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है, तो उसमें अनेकों प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, अब उनसे पूछो है कि नहीं है, तो कुछ लोगों का कुछ वर्णन होता है, कुछ कहते हैं भगवान तो एक ज्योति स्वरूप है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान निर्गुण है, कुछ लोग कहते हैं कि सभी देवी देवता भगवान बराबर है, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। उनसे पूछो सारे रास्ते एक तरफ कैसे जाते हैं, दिल्ली जाने तो इधर जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना तो इधर जाना पड़ेगा, सारे रास्ते एक तरफ कहाँ जाते हैं। लेकिन लोगों का उत्तर होता है इस तरह से, तर्क वितर्क करते हैं, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि अच्छा किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या कोई रोशनी काम कर सकती है। आजकल लोग बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्योति और पता नहीं क्या क्या संस्थाएं चल रही हैं उसमें बहुत आकर्षित होते हैं। एक व्यक्ति तो हमको मिले, अभी कल ही चर्चा कर रहे थे, 50 ईयर्स पहले वो इस्कॉन में जुड़े थे, 15 साल पहले कानपुर इस्कॉन से जुड़े थे, वो मिले थे। तो वो वर्णन कर रहे थे कि उनके मतलब एक जान पहचान के हैं, उन्होंने उनको भक्ति में लगाया 15 साल पहले, और 15 साल तक वो भजन साधन किए, चैंटिंग कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे और लोगों को प्रचार भी कर रहे थे। आज 15 साल बाद वो ओम शांति में जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए 15 साल बाद? तो उनका कारण यही है कि जब भी कोई काम करते हैं हम कर्ता की भावना से करते हैं, हम भगवान की सेवा की भावना से नहीं करते। यहाँ तक कि हम माला भी करते, पता है हम माला करते हैं सुबह सुबह उठ के 16 माला अहंकार। तो इस तरह से अगर ये भी है ना हमारा गलत है। एक्चुअली भगवान की कृपा मानते हुए हमें हर एक काम को सोचना चाहिए उनकी इच्छा से। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं सकता। तो इतने बड़े हम कैसे हिल जाएंगे, माला भी हिल जाएगी, भक्त भी बन जाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है ना ये सब कुछ, चाहे हम कोई सेवा करें या हम कुछ भी प्राप्त करें जीवन में, ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए और लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए कि आपकी जो ये रोशनी है, आप सोचिए मतलब ये ट्यूबलाइट है या स्ट्रीट लाइट है, इसके अंदर आप 5-6 साल तक तपस्या करते रहे ट्यूबलाइट के नीचे और अचानक ट्यूबलाइट से एक बल्ब निकल जाए बाहर और फिर बोले खास है, बोले रोशनी के अंदर से एक बल्ब प्रकट हो गया। हो सकता है कभी किसी भी चीज की सृष्टि की रचना करने के लिए किसी व्यक्ति की बुद्धि चाहिए ना? तो उस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान एक पुरुष है लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है, वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष हमसे पहले कुछ भी नहीं था और उन्होंने ये सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए बनाया सृष्टि को। लोग प्रश्न पूछते हैं क्यों बनाया, कुछ लोग तो गाना भी गाते हैं, क्या तेरे मन में समाये तूने काहे को दुनिया बनते। तो लोगों को बोलना चाहिए कि हम अपना घर बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए बनाते हैं। उसमें एसी लगाते हैं, सोफा सेट डालते हैं बढ़िया सा, तो अपने आनंद के लिए बनाते हैं। उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स रखते हैं तो किसके आनंद के लिए रखते हैं, अपने आनंद के लिए रखते हैं। अभी वर्कर जो है वो ये सोचने लग जाए, काम करने वाले जो काम करने आते हैं हमारे घर नौकर, वो ये सोचने लग जाए ये तो मेरे लिए बनाया है, तो हम क्या करेंगे, धक्का मार के निकाल रहे हैं। तेरे लिए थोड़ी बनाया है, तो हमने अपने आनंद के लिए बनाया है, तुमको क्यों रखा है, अपनी सेवा के लिए रखा है। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि किस लिए बनाई, अपने आनंद के लिए। हमको क्यों रखा, उनकी सेवा के लिए। लेकिन ये छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आती और तर्क वितर्क करते। तो उनसे पूछना चाहिए इतना बड़ा समुद्र आपको नजर आता है ये किसने बनाया, तो वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग तर्क वितर्क करते हैं किसने बनाया, हमने बनाया, हमने जो ढूंढा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बहुत बार बोलते हैं कि कितना हाइड्रोजन चाहिए और कितना ऑक्सीजन चाहिए दोनों को जोड़कर समुद्र बनाने के लिए। तो एक बार बीरबल और अकबर में भी इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गया। अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल आप तो हिंदू हैं, आप कहते हैं कि आपके भगवान ये करते हैं वो करते हैं, आप ये बताइए अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आप हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर एक बात बोला जाता है खुदा की खुदाई। हमको ये समझ में नहीं आता कि खुदा की क्या खुदाई से बोलते हैं, क्या कृपा है। बोलते हैं ना हिंदू लोग बोलते हैं या वैष्णव बोलते हैं भगवान की कृपा है, तो ऐसे मुस्लिम लोग जो मौलवी होते हैं वो क्या कहते हैं, खुदा की खुदाई है। तो ये हमें समझ में नहीं आता कि क्या है, कृपा क्या होती है, खुदाई क्या होती है। तो बीरबल सोचने लगे, बहुत इंटेलिजेंट थे प्रभुपाद, अनेकों बार बीरबल स्टोरीज कोट करते थे अपने प्रवचन में और बोलते थे कि देखो इससे हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। तो बीरबल अब बोले कि ठीक है मैं आपको लेके चलूंगा, एक समुद्री तट के ऊपर लेके जाते हैं और समुद्री तट पर पहुंचकर और कहते हैं ये देखिए ये है खुदा की खुदाई। तो बोले कुछ समझ नहीं आया मतलब, तो बोले देखिए इतना सारा पानी है, कितना पानी, अरे बहुत पानी है, इस छोर से दूसरा छोर नजर नहीं आता, इतना पानी इसके अंदर अथाह जल भरा हुआ है। पहले सोचिए इतना सारा जल भरने के लिए पहले कुछ गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो इस गड्ढे को किसने खोदा, ना मैंने खोदा ना आपने खोदा, ना मेरे पिताजी ने खोदा ना आपके पिताजी ने खोदा, तो ये खुदा की खुदाई है जिसके अंदर इतना सारा जल भरा गया है। तो ये खुदा की खुदाई है, खुदा ने ऐसे ऐसी खुदाई कर दी पूरे जगत में कि वहां पानी भर सकते हैं, गैलन्स ऑफ वाटर भरा हुआ है उसके अंदर। तो ये भगवान की सृष्टि की रचना भगवान ही कर सकते हैं और किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। कौन इतना बड़ा समुद्र के लिए पहले जाएगा, डिगिंग करेगा, खुदाई करेगा और फिर पानी भरा जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी से लोग बोलते थे, एक बार एक साइंटिस्ट है बोले प्रभुपाद स्वामी जी हमने एक मॉस्किटो बनाया है। बैक टू गॉडहेड मैगजीन में एक बार पढ़ रहा था भगवत दर्शन, तो उसमें बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी हमने एक मॉस्किटो बनाया है। कैसा मॉस्किटो है, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा, इंडिया में तो अभी आया है वहां पहले से था, सीसीटीवी कैमरा लगाया है और जब हम खुदाई करते हैं तो उस खुदाई के अंदर उस मॉस्किटो को छोड़ देते हैं मच्छर को नीचे, और नीचे जाने के बाद वो वहां का पिक्चर्स खींचता है, फोटोग्राफ तस्वीरें लेता है और बाद में हम उसको पेन ड्राइव जैसे आजकल लगता है कंप्यूटर में लगाते हैं और फिर उसमें आ जाता है कि इसके अंदर गोल्ड है, कि इसके अंदर कोयला है कि हीरे है, इस सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, और सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अरे अच्छा, तो फिर प्रभुपाद जी से बोले, आप बताइए आपके भगवान ने क्या बनाया, हमने तो इतना दिमाग लगाया ये बनाया। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा, आपने सिर्फ एक मच्छर बनाया और उसमें इतने अहंकार, अब मिथ्या अहंकार में झूमे जा रहे हो, मैंने ये बना दिया कि नीचे क्या है 200 फीट 400 फीट ये हम पता कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे भगवान ने तो एक मच्छर नहीं बनाया, इतने मच्छर बनाए और उनकी अनेकों बीमारियां भी बनाई, डेंगू इतनी सारी, एक बीमारी का इलाज ढूंढते तो दूसरी बीमारी आ जाती, चिकनगुनिया मलेरिया, इतने तरह के मच्छर बनाए, साइंटिस्ट ढूंढ ही नहीं पा रहे ये बीमारी कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि भगवान ने क्या क्या बनाया। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको डिटेल में बताया भी, क्या आपकी जो हमारा मच्छर है, आप सोचते हो कि ये बिना टेक्नोलॉजी का मच्छर, इसको बनाने के लिए कितना कितने ब्रेन की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने फिर साइंटिफिक तरीके से उनको समझाया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद फार्मासिस्ट थे तो साइंटिस्ट भी थे, तो उस तरह से वो जानते थे। तो उन्होंने बताया कि जो मच्छर है ये, इसके अंदर इतनी स्पेशल टेक्नोलॉजी है कि जिस जगह उतरता है उसी जगह से फ्लाई भी करता है, जैसे हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर लैंड करता है एक ही जगह से लिफ्ट करता है, हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर है। वरना उसको कोई एरोप्लेन को भी रनवे की जरूरत है, कार को भी स्टार्टर की जरूरत है, लेकिन वो एक ही जगह से लिफ्ट करता है एक ही जगह पर लैंड करता है। इतना लाइट वेट है कि जिस स्थान पर उतरता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कुछ उतरा हुआ है। और उसके बाद में उसके पास एक निडल है, एक सुई है, ऐसी सुई जो जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है, आप देखिए जो नॉर्मल भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो इंजेक्शन लगाते में दर्द होता है क्योंकि सुई अंदर जाती है पतली से पतली, आप बहुत पेन प्रिक बोलते हैं ना, इतना छोटा सा सुई बनाते हैं साइंटिस्ट, लेकिन भगवान ने उस मच्छर के अंदर एक ऐसी सुई बना दी, वो शरीर के अंदर जाती है और बाहर भी आती है, मालूम नहीं पड़ता, अनजाने में वो गई और वापिस आ गई। अच्छा, खाली सुई अंदर जाती है? नहीं नहीं, उसके बाद एक सक्शन पंप, जैसे वैक्यूम क्लीनर सफाई करने के लिए लगाया जाता है अंदर, एक क्लीनर वैक्यूम पंप लगाते हैं, ऐसा एक पंप लगा है जो अंदर निडल जाते ही सारा ब्लड चूस लेता है, सारा खून चूस लेता है और उसका पेट पूरा लाल रंग का हो जाता है, भर जाता है। तो ये पावर कैसे उसके अंदर आई, और फिर भरने के बाद उसका पेट अभी हैवी हो गया तो ये नहीं कि वो वहीं खत्म हो गया, लुढ़क गया, जैसे हम प्रसाद पाके नींद आ जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, वो वहां से लिफ्ट करता है, निडल बाहर निकालता है और फिर उठता है। अरे अच्छा, और साथ में उसके एक हॉर्न भी लगा, हूटर, आप देखिए सृष्टि कैसे बनी, हूटर लगा है, बिना बताए नहीं खाटेगा आपको, बिना बताए खून नहीं लेगा आपका, आपको बताएगा कि मैं आ रहा हूं, तो उसको एक वॉइस, एक नॉइस दिया गया है, एक हमिंग आवाज दिया उसको, जिधर उतरना है उधर उतरेगा, फिर उसके बाद अंदर वो निडल डालेगा, चूसेगा, फिर उड़ जाएगा। बोले, और ऐसा एक नहीं बनाया, गैलर मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों मच्छर बनाए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब भी मच्छर मिलेगा, मायापुर जाएंगे तब भी मच्छर मिलेगा, बड़े भी मिलते हैं वहां तो, और वृंदावन जाएंगे तब भी मच्छर मिलेगा, दिल्ली में रहते हैं तब भी मच्छर मिलता है। तो ये देखिए कितनी जगह अवेलेबल करा दिया और कितने प्रकार के मच्छर बना दिए, आपने एक मच्छर बनाया और फिर सोचते हो मैंने बना दिया, तो क्या है? तो प्रभुपाद जी नष्ट कर देते थे उनकी फिलोसफी को, तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से समझाया। फिर कुछ लोग बोलते हैं हमने ये बनाया, एसिड बनाया, सिट्रिक एसिड बनाया, हमने ऐसा मोटर बनाया कि नीचे से ऊपर पानी ले जाते हैं। आप उनसे बोलिए कि जो नारियल के पेड़ है उसमें कौन पानी डालते हैं, नारियल के पेड़ में पानी नीचे डालते हैं और नारियल में पानी ऊपर भर जाता है, नीचे से ऊपर कौन लेके जा रहा है, ये मोटर किसने बनाया, एक बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ होता है, एक बीज के अंदर फल होते हैं, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। लेकिन मिथ्या अहंकार में एक सिट्रिक एसिड बना लेते हैं ग्लूकोन डी, फिर बोलते हैं हमने ग्लूकोन सी हमने निकाला, संतरे को या फिर नींबू को निचोड़ करके हमने बना लिया। अरे आपने क्या बनाया, ये सब तो किसने बनाया, कृष्ण की शक्तियों ने बनाया, भगवान ने बनाया, वो शक्तिमान है और उनकी शक्ति ने सारा का सारा काम कर दिया। तो इस तरह से उनको तर्क उतर करना चाहिए, इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमारे भी जीवन में एक बीज मिला हमको, कौन सा बीज, भक्ति का बीज, और इसी बीज के अंदर पूरा पेड़ है, इसके अंदर फल भी है, इसका आनंद भी है, लेकिन वो बीज हमें समझ नहीं आता कि कैसे प्राप्त हो गया। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अभी बीज मिल गया और इस बीज को आरोपित कर दिया आपने मिट्टी के ऊपर, तो कहते हैं विनम्रता की मिट्टी पर ये आरोपित करना चाहिए। ऐसे होती है ना, गेहूं यहाँ होगा, राइस इस एरिया में होगा, जैसे करनाल या साइड में जाते हैं तो वहाँ होती चावल की खेती बहुत ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन इस साइड पे जाएंगे तो हमें और नजर नहीं आएगी। या फिर पहाड़ी इलाकों में फलों की खेती ज्यादा होती है, तो ऐसा कौन सी मिट्टी में इस बीज को लगाना चाहिए, भक्ति लता बीज। तो बताते हैं ह्यूमिलिटी, ह्यूमस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूमस, और ह्यूमस में ह्यूमिलिटी मतलब उसी से आया है विनम्रता। विनम्रता की मिट्टी में ये बीज लगता है और फिर ये बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और कैसे बढ़ता है इसके अंदर जल डालना पड़ता है। कहते हैं श्रवण कीर्तन कर जल सिंचन, श्रवण कीर्तन करने से उसका सिंचन होता है, वो बीज बढ़ता है और फिर उसी बीज से पेड़ निकलेगा, उसी बीज से फल भी निकलेंगे लेकिन नजर नहीं आते हैं। अरे क्या दे दिया छोटा सा मंत्र हरे कृष्ण, इसमें कैसे सब कुछ होगा, क्या इसी में शास्त्र है, क्या इसी के अंदर आनंद है, क्या इसी के अंदर सेवा भावना है, क्या इसी के अंदर गोलोक धाम है। हाँ सब कुछ है इस बीज के अंदर, लेकिन इसको विनम्रता की मिट्टी में लगाना पड़ेगा। अहंकार की मिट्टी में लगाते हैं इसीलिए 15 साल बाद छोड़कर ओम शांति चले जाते हैं। अब इसको विनम्रता की मिट्टी में लगाते हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करते हैं, इसको जल सिंचन करते हैं, अपराधों से बचते हुए ध्यान पूर्वक इसका जप करते हैं, तो फिर ये वृक्ष बन जाता है। और फिर वृक्ष को कोई नहीं काट सकता, लेकिन छोटे छोटे पौधे होते हैं कोई भी निकाल सकता है। तो इसमें क्या अहंकार से बचते हुए हमें सदा क्या बोलते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं नमाम दुष्कृतनाम मूढ़ाम प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया प्रहत्यानम आसुरम भावम आश्रितम। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, उसमें से पहले है जो मूढ़ाम दुष्कृतनाम मतलब दुष्ट, भगवद गीता में बताया गया दुष्ट, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, वो बोलते रहते हैं तो हमने किया है तुम्हारे भगवान ने क्या किया, वो तो एक मूर्ति है, वो तो एक पत्थर है, ऐसे करके लोग वर्णन करते हैं। तो पहला शब्द भगवान ने उनके लिए वर्णन किया भगवदगीता के 7वें अध्याय में, मूढ़ाम मूर्ख लोग, वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान क्या है, समझते ही नहीं है, वो सिर्फ रात दिन मेहनत कर खुश है। जैसे वर्णन आता है कि एक बार एक चूहा और एक सांप एक पिटारे में बंद हो गए, एक टोकरी में बंद हो गए। अभी चूहा और सांप तो एक दूसरे के दुश्मन है, अभी तो हाँ हर वक्त ये सोचता है कब ये मूषक जो है चूहा मेरे मुख में प्रवेश कर जाए और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए, भूखा हूं से वैसे रात से। लेकिन वो जब टोकरी में बंद हो जाते हैं तो वहां पर देखिए जो आज के जमाने के लोग हैं ना, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, हाँ वाचिक वर्णन वर्डी लैंग्वेज, अपनी भाषा को इतना मीठा मधुर बोलते हैं, चाहे मन में कितना भी अहंकार हो द्वेष हो, हमें अंतरंग से शुद्ध होना चाहिए, एक्चुअली बाहर से भी हो लेकिन अंदर से भी होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो वो सांप और चूहा अभी सोच रहे थे बाहर कैसे निकले, अब चूहे का तो एकदम 105 फीवर हो गया, बोला कि अभी कभी भी निकल जाएगा मेरे को। तो वो जब ये सोच ही रहा था इतने में सांप बोले डरो मत, आई एम योर फ्रेंड, मैं तो आपका मित्र हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मित्र कैसे हो, कह रहे देखो अभी हम दोनों फंस गए हैं इस पिंजरे के अंदर ना टोकरी के अंदर, तो इससे बाहर निकलने के लिए अब तुम ही हो समझदार, मेरे तो दांत नहीं, तुम ही कुतर सकते हो काट सकते हो टोकरी के छेद कर सकते हो और फिर इसमें से हम दोनों बाहर निकलेंगे, तो इसलिए जितना टाइम काटने में लगेगा तुम काटो आराम से, मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर तुम निकल जाना फिर मैं निकल जाऊंगा। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी है, दोनों की दोस्ती आ रही होगी आराम से, सांप बैठ के आराम से अपना स्मरण करने लगा। और फिर चूहा वहां पर टोकरी काटने का कोशिश कर रहा था, तो टोकरी का ऊपर का छेद बहुत ऊपर था, वो जंप करता उसका मुंह नहीं जाता, वो जंप करता तो सांप ने देखा है तो बार बार विफल हो रहा है अपने प्रयास में, तो मेरा चिंता मत करो मैं तुम्हें सीढ़ी प्रदान करता हूँ। अरे सीढ़ी कहाँ से आएगी, तो मेरा मेरा जो फन है ना इस फन के ऊपर बैठ जाओ और मैं अपने फन को ऊंचा कर दूंगा, ऊंचा करने पर तुम्हारा मुंह पर आ जाएगा टोकरी में छिक 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 काट देना। श्री राधा गोविंद की जय, सीताराम श्री हनुमान की जय, राष्ट्र की जय, भजत पावन श्री प्रभुपाद की जय। तो तुम उसको आराम से भक्षण अपना काट लेना, करें ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और फन के ऊपर बैठ गया और फिर धीरे 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 टोकरी को काट रहा है। अभी उसी का लग रहा है मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, फिर वो काट रहा है काट रहा है काट रहा है, काटने के बाद वो निकलने के लिए जैसे ही मुंह निकलने लगा तो सांप ने बोला अरे यार अजीब काम करते हो यार दोस्त, फिर घर खुद भी कर जाओगे मैं तो रह जाऊंगा, मेरे साइज का बनाया कि नहीं, मेरी पूंछ थोड़ी बीच में से पेट मोटा है फन भी मोटा है, मेरे साइज का बना के बिना मैं चेक तो कर लूं। तो उसने कहा हाँ हाँ दोस्त बिल्कुल, अभी जरा दोस्ती में सोच रहे हैं। तो उसने धीरे से फन को नीचे किया, चूहा नीचे उतर गया और फिर इसने अपने फन को ऊपर किया, फिर देखा साइज हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा मुंह निकाला पेट निकाला पूंछ निकाली बाहर निकल गया। अभी चूहा बोला मैं रह गया, कह रहा चिंता मत करो मैं अपनी पूंछ डाल देता हूँ तुम उसको पकड़ के बाहर आ जाना। तो उसने पूंछ डाल दी पकड़ के बाहर आया, अभी इधर पूंछ डाल रखी इधर मुंह खोल रखा है अपना, जैसे वो बाहर निकला से पूरा खा गया, बाहर भी निकल गया पेट भी भर गया। हरे बोल। तो इसी तरह से ये जो प्रकृति है ये हमारे को मिथ्या कर्ता की भावना में जब हम कर रहे होते हैं तुम्हें पता नहीं चलता है कि अहंकार वश कब अपराध रूपी सर या मृत्यु रूपी सर कब हमारा भक्षण करने के लिए तैयार हो रहा है। यही प्रकृति हेल्प कर रही होती है हमको माला भगवान से दूर ले जाने के लिए, और लेकिन बाद में यही हमारा भक्षण कर लेती है। भगवान की प्रकृति इस प्रकार की है, यही हेल्प करती है भगवान। नहीं नहीं भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती, नहीं नहीं करा तो मैंने है। एग्जामिनेशन होते हैं ना लोगों से पूछो कितने नंबर आए 98%, तो कौन लेके आया हम लेके आया रात दिन मेहनत करी और हमने 38% कौन लेके आया, अरे भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया 98 आए तो हम और 38 आए तो भगवान, भगवान जिम्मेदार गलतियों के लिए अच्छाइयों के लिए हम जिम्मेदार। तो इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए, एक तरफ तो हो जाए कम से कम कर, अगर 38 में भगवान तो 98 में भी भगवान, अगर 98 में हम तो फिर 38 में कम से कम एक साइड तो रहे, लेकिन हम तो बीच में अटके हुए उसी चूहे की तमान। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रकृति है ये हमें कभी भी भक्षण करेगी, अपराध रूप में या मृत्यु रूप में तो आएंगे, अपराध करेंगे तभी भगवान से दूर चले जाएंगे, और या फिर अंतकाल में पूरे जीवन बोलते रहेंगे भगवान कुछ नहीं है भगवान कुछ नहीं है, तो मृत्यु के रूप में भगवान समाप्त कर देते हैं जीवन। तो इस तरह हमको नहीं करना चाहिए, तो ये मूर्ख लोग इस प्रकार के मूढ़ाम जिनको बोला गया। फिर नरभम बोले गए, जो सोसाइटी में हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी है, हम किसी विषय व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो भगवान को भूल करके और सिर्फ अपनी पोजीशन प्रतिष्ठा सीट के चक्कर में घूम रहे हैं उनको बोला गया नरभम। और उसके बाद आते हैं मायाम, माया में जो फंसे हुए, माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, सिर्फ लगे बड़ी बड़ी एजुकेशन लेने में। एक व्यक्ति ने तो एजुकेशन में लिखा था अपने कार्ड में आप पीएचडी आप बीएस, तो मैंने सोचा कि ये क्या कार्ड में लिखा है पीएचडी बीएस, तो बाद में उनसे पता चला पूछा कि बड़ी डिग्री क्या है आपकी, पीएचडी का सुना है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, लेकिन ये क्या है पीएचडी बीएस ये कौन सी आपकी डिग्री है, तो बोलते हैं पीएचडी अप्लाइड बट फेल्ड, पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया लेकिन फेल हो गया, तो मैं कर ही नहीं पाया इसलिए लिखता हूँ। और इससे क्या होता है लोगों को पता तो रहता है मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, जो लोग पूछते नहीं है उनको लगता है पीएचडी से बड़ी डिग्री है, हमने तो पीएचडी किया तो पीएचडी बीएस है। तो ये मिथ्याहंकार वश लोग ये छपाते हैं। एक व्यक्ति ने तो कार्ड छपवाया था और उसमें लिखा था ऊपर वर्किंग एज एन अकाउंट डिपार्टमेंट ऐसे करके लिखा था, नीचे लिखा था ब्रैकेट में ऑलमोस्ट बीकॉम। तो मैंने पूछा ऑलमोस्ट बीकॉम क्या आप अभी परस्यू है, कह रहे नहीं तीन साल पहले ट्राई किया था लास्ट पेपर फेल हो गया, तो अभी मुझे लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा तीन साल से बार बार आखिरी साल में फेल हो रहा हूँ, लेकिन बताना तो चाहिए दो साल पास किया है तो टू ईयर बीकॉम तो नहीं लिख सकता, तो ऑलमोस्ट बीकॉम मैंने लिखा खत्म होने वाला। तो ये क्या है माया अपराध ज्ञान है, ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया व्यक्ति का, वो बस पथ्य अहंकार प्रतिष्ठा बस ये नीचे लिख जाओ मेरे नाम के आगे, डिग्री पे डिग्री लेते जा रहे हैं और कभी किसी की डिग्री काम ही नहीं आती जीवन में। बताते हैं मृत्यु के अंतकाल में सारी डिग्रियां छीन ली जाती हैं, और फिर एक प्रकार के लोग हैं जो आसुरी हैं जो कहते हैं भगवान का धाम कहाँ है, वो कौन है, हमने तो कोई देखा नहीं है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते थे। और वो ये भी बोलते हैं इवन कुछ आसुरी लोग, अगर भगवान और भगवान ने ये माया की शक्ति माया ये बनाया संसार, अगर भगवान यहाँ आते हैं तो फिर वहां कौन रहता है धाम में, आप कहते हो भगवान आए उन्होंने लीला करी, भगवान यहाँ थे तो वहां कौन था, मतलब जैसे हम घर से बाहर चले जाए तो फिर घर पे कौन था, ये भी बोल सकते हैं कि प्रभु जी घर पे भी थे, प्रभु जी मंदिर में भी थे, दोनों प्रभु जी। तो इस तरह से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कैसे हो गया। तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे से नहीं है, भगवान अपना 16,108 रूपों में भी विस्तार कर सकते हैं, भगवान अपना करोड़ों रूपों में विस्तार कर सकते हैं, भगवान हर जीव में भी प्रकट है, है ना। भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, सबके हृदय में विष्णु रूप में भगवान बैठे हैं, परमात्मा के रूप में। तो इतना विस्तार किया भगवान ने अपना, फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। जैसे 100 रुपए के नोट में से अगर 50 रुपए निकाले जाए तो 50 बचते हैं, लेकिन भगवान ऐसे 100 में से 50 निकालो तब भी 100, 80 निकालो तब भी 100, 100 भी निकाल लो तब भी 100, 100 के 100 ही रहते हैं, पूर्ण है भगवान। तो इस तरह से हमको घबराना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि जब फैक्ट्री का ओनर होता है, फैक्ट्री जिसने बनाई उसने काफी सारी ब्रांच अपनी खोली, एक ब्रांच, दो ब्रांच, 100 ब्रांच, 200 ब्रांच पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में खुल गए, और सब जगह उसकी शक्ति का काम चल रहा है। लोग पूछेंगे आपकी कंपनी का ओनर कौन है, मिस्टर सो एंड सो, टाटा या बिरला जो भी हम ले सकते हैं नाम, और उनके अनेकों अनेकों ब्रांचेज है, सब जगह काम चल रहा है। नाम पूछेंगे मालिक, बोले वो है मालिक, ये है मालिक, सब लोग जगह मालिक वही है और सब जगह ब्रांचों में काम चल रहा है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, मालिक कौन, कृष्णा, सब जगह काम चल रहा है। फिर भगवान आते कैसे, भगवान जब फैक्ट्री के ओनर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो मालिक आता देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती तो फिर ओनर खुद आ जाता चेक करने क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कर देता हूँ। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वहां के वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं हम आपका एक फेयरवेल, एक पार्टी करना चाहते हैं, हमारे कुछ मेंबर्स छोड़कर जा रहे हैं तो आप आइए, हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, जैसे दिवाली पार्टी हो गया, तो ओनर आते हैं उस ब्रांच में, उस सेंटर पर। तो ऐसे परिक्रमा है साधु ना, साधुओं के लिए भगवान जब दूर दूर से भक्त पुकारते हैं कि ठाकुर जी हे कृष्ण आ जाइए, तो उनको दर्शन देने मात्र भगवान आ जाते हैं। ओनर है तो क्या, वो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं भी जाए लेकिन उनकी शक्ति से सारा संसार, सारी ब्रांचेस चल रही होती है। ये थोड़ी ओनर चला गया एक ब्रांच में तो बाकी की 190 ब्रांच बंद हो गए, बोले ओनर तो उधर चला गया। तो इस तरह से एक बहुत ही एग्जांपल है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इससे समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में आता है, कहते हैं जीव तत्व शक्ति विष्णु तत्व शक्तिमान, जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, विष्णु पुराण आदि तहते प्रमाण। विष्णु पुराण में इस प्रकार से प्रमाण मिलता है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण, कि जीव तत्व एक शक्ति है, हम जीव शक्ति है और भगवान कौन है, कृष्ण तत्व शक्ति है, विष्णु तत्व। भगवान अलग है, हम अलग है, हम कंपेरिजन करते हैं कि हम बाजार चले गए तो घर पे कौन, और हम घर पे आ गए तो बाजार में कौन, तो हम अपने को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो जीव तत्व है हम, और भगवान कृष्ण तत्व है, दोनों अलग है। इस तरह से हमको समझना चाहिए। कुछ फिलोसफर्स आए जैसे आसुरी होते हैं ना, उन्होंने आकर लोगों को भ्रमित कर दिया। जैसे एक फिलोसफर को प्रभुपाद जी बहुत वर्णन करते हैं, चार्वक मुनि, वो आकर कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतम पुनारद मनोगत भवेत। वो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए रोज, आप लोगों को नहीं पीना चाहिए वरना हैवी वेट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ऋण भी लेना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, लेकिन क्या पीना चाहिए, घी पीना चाहिए। इसका मतलब है बड़ी गाड़ी में चलो, घर बड़ा हो, फ्लैट हो, नित्य अहंकार में रहो, चाहे लोन लेके रहना पड़े, इसीलिए इतने सारे लोन है। आज प्रॉब्लम आ गई, पूरा इंडस्ट्री डाउन हो गया पूरे जाते जगह जगह, क्यों, क्योंकि लोगों ने लोन ले लिया बताकर ये चाहिए वो चाहिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले हैं और अब पैसा पे बैक ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना लोन है, 5,000 करोड़ के लोन, 10,000 करोड़ के लोन ले रखे लोगों ने, और बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े व्यापारी बन गए हैं लोग। तो समझना चाहिए कि हम लोन लेके, वो कह ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे, जैसे भी जियो सुख से जियो, घी पी के जियो, मर्सिडीज में ले लो एक बढ़िया सी, लोन पर ही लेनी पड़े और फिर पूरा जीवन उसको चुकाते रहो, क्योंकि भस्मी भूतस्य देहस्य, ये जो देह है ये तो अंत में जली जाने वाला है। अब देखो हम बोलते हैं अरे ये तो जली जाएगा, इससे पहले भगवान का नाम ले लो, और वो फिलोसोफर क्या कह रहे हैं, भस्मी भूतस्य देहस्य, ये तो देह जलने वाला है, जब तक जीवित हो तब तक बढ़िया से रहो अपने आराम से, क्योंकि कुतः पुनर्गमनो भवे, इस पुनर्गमन को वो मानते नहीं है कि दोबारा जब हमें आना पड़ता है, हम लोग मानते हैं जैसे कर्म करोगे वैसे आना पड़ेगा, तो वो लोग बोलते नहीं 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 दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो भी जीवन है अभी मजे से ले लो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, बस मजे ले रहे हैं आराम से, कभी इधर कभी उधर, पार्टी पार्टी, हैप्पी बर्थडे, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो हमको इस तरह से समझना चाहिए कि ये सब गलत फिलॉसफी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, जीवे ने निस्तार लागे सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाषा सुन ले हैले सर्वनाश। ये जो मायावादी भाषा है, अभी वो प्रभु जी जो कानपुर वाले में एग्जाम्पल दे रहा था, वो डेली ओम शांति को सुनते थे, सुनते सुनते क्या हुआ, कृष्ण ही भूल गए जीवन से, नहीं नहीं भगवान, भगवान कृष्ण, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद उनकी ज्योति, वो इतने थर्ड लेवल नीचे आ गए सीढ़ी पे, और फिर भी बोल रहे नहीं नहीं आपने सुना नहीं है, आप सुनेंगे ना क्या अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग, अरे बोलते ही तो है लेकिन वो जानते नहीं कि जीवन में कृष्ण भगवान है। इसीलिए बोला जीवन स्टार लगी सूत्र कैला व्यास, व्यास देव ने हमको ये शास्त्र दिए, भागवत पुराण, पद्म पुराण, इनको सुनना चाहिए। मायावादी बात सुन ले हैले सर्वनाश, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा जो इधर उधर के मायावादी भाषणों को सुनेगा। और शंकराचार्य जो है वो भी आए और उन्होंने आकर बहुत तरह की फिलॉसफी को काट दिया। वो कहते हैं कि अगर भगवान आध्यात्मिक है तो वो माया रूपी संसार कैसे बना सकता है, अगर उनका पूरा शरीर सच्चिदानंद है तो उन्होंने माया रूपी संसार कैसे बना दिया, और अगर उन्होंने माया रूपी संसार बना दिया तो उनके अंदर से कुछ माया निकली होगी, इसका मतलब वो तो भौतिक हो गए, तो फिर वो आध्यात्मिक कैसे है, और अगर वो इस संसार में आते हैं तो ये माया रूपी संसार में अगर वो आ रहे हैं तो भौतिक शरीर लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आध्यात्मिक शरीर में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में आने के बाद तो किसी को वापस गरीब में आना नहीं पड़ता। तो इस तरह की फिलॉसफी को बोल बोल कर बार 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 बोलते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जिस प्रकार से तोता हरे वृक्ष के अंदर जाकर बैठ जाता है, तोता होता है तो हरे वृक्ष में जाके बैठ जाए तो लोगों को लगता है अरे तोता कहाँ चला गया, लेकिन तोता अलग है पेड़ अलग है। ऐसे हम जब भगवान के घर जाते हैं या वहां से आते हैं तो हम अलग हैं और भगवान का द्वार अलग है। ये नहीं होता कि एक बूंद पर जाकर समुद्र में मिल जाएगी, ऐसा भगवान में लीन होने वाली कोई फिलॉसफी, इस प्रकार का कोई दर्शन हमारे शास्त्रों में नहीं है। लेकिन लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर सुनते हैं, और इवन ये कहते हैं आप प्रभुपाद जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कई बार वर्णन कर इस फिलॉसफी को काट दिया, जिसको रामानुजाचार्य ने भी वैशिष्ट सिद्धांत के द्वारा स्थापित किया कि भगवान और हम अलग अलग हैं, हम भगवान के जैसे नहीं हो सकते। मिथ्या अहंकार में लगता है हम करने वाले हैं, करने वाले कृष्ण हैं, हम तो उनकी जीव तत्व शक्ति के कारण थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी उनकी कृपावश करते हैं, हाँ भगवान की इच्छा के बिना लिखते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसमें उन्होंने बताया कि तथापि अचिंत्य अशक्ता है अविकारी प्राकृत चिंतामणि ताहे दृष्टांत धरी। जो पारसमणि पत्थर होता है, चिंतामणि रत्न, उसको लोहे के साथ अगर छुला दो तो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, लेकिन अगर उसमें सोना बना दिया तो क्या चिंतामणि रत्न घिस जाता है, कि अभी वो 100 ग्राम का 50 ग्राम रह गया, 60 ग्राम रह गया, या 2 तोले का 1 तोला रह गया, या ऐसा तो नहीं होता। तो उन्होंने कहा तथापि अचिंत्य सत्ता है अविकारी प्राकृत चिंतामणि तारे दृष्टांत धरे। क्या दृष्टांत दिया, प्राकृत वस्तु यदि अचिंत्य शक्ति है, ईश्वर अचिंत्य शक्ति इथा के विस्मय। उन्होंने बोला कि अगर प्राकृत वस्तु चिंतामणि रत्न में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो लोहे को क्या बना सकती है, सोना बना सकती है, तो क्या कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति नहीं है कि अगर कोई जीव उसको ले तो वो भगवत धाम जा सकता है, या फिर भगवान जो है वो भौतिक सृष्टि की रचना कर सकते हैं। ये थोड़ी है भगवान ने माया की रचना करी तो भगवान में माया हो गए, ऐसा नहीं है, हमें समझना चाहिए। इसीलिए भगवान ने बोला कि माया ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंत थे। ये जो माया है मेरी देवी, ये बड़ी दुरत्या है इसको पार कर पाना, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसे आसानी से पार कर लेता है। तो हमें इस तरह से समझना चाहिए कि अगर चिंतामणि रत्न नहीं घिसता तो ईश्वर कैसे घिर जाएंगे, वो कैसे कम हो जाएंगे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि शंकराचार्य जी ने या फिलोसफर्स ने इस तरह का वर्णन किया ही क्यों, तो बताते हैं शिव पुराण जो तामस पुराण है उसके अंदर कृष्ण भगवान ने शिव जी को आदेश दिया, शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे, उसमें उन्होंने कहा द्वापर आदो युग भूतवा कल्या मानुषादिशो स्वामे कलिश तस्वत्वं च जन्म आदि विमुखं कुरु। आप क्या करो द्वापर आदो युगो, द्वापर के बाद में जो युग आएगा कलयुग, भूतवा कल्या मानुष आदिशो उसमें मनुष्य शरीर लेकर जाओ और फिर क्या करो स्वामे स्वांग रचो किसका जन्म नादि विमुखां करो, सब लोगों को जो है उनको विमुख करो जो लोग माया में जाना चाहते हैं जो अपनी इच्छा से। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा हमें फ्री विल मिला है, आजादी है, चूज कर सकते हैं कहां जाना है, भगवत धाम या फिर भौतिक जगत। अगर चाहते हैं भगवत धाम जाना तो हमें भगवान की शरण, भगवान के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कार्तिक शुरू हो रहा है दीप दान करना पड़ेगा, जप ज्यादा करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, इस तरह से हमको करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा रोज भागवतम का, भगवत की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर माया में जाना चाहते हैं तो दिवाली पार्टी मनाएंगे, ड्रिंक्स करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो जो जिसकी इच्छा है वो वैसे काम करता है। इसीलिए भगवान जो है उनकी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है प्रेक्षात्मिका शक्ति और एक है अवरणात्मिका शक्ति। तो प्रेक्षात्मिका शक्ति है वो भगवान की, वो खींचती है संसार को की वृत्ति को इस जगत में लाने के लिए, और जो अवरणात्मिका शक्ति है वो आवरण लगा लेती है माया का, कि अब उसको दिखने ही बंद हो जाएगा कि भगवत नाम कुछ होता है, भगवान भक्ति में आने के बाद भी ये शक्तियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें तत्पर रहना चाहिए, हमेशा इन शक्तियों से लड़ते रहना चाहिए। जब भी ये शक्तियां सताएं आवरणात्मिका शक्ति, आवरण आ जाए और लगने लगे नहीं 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 मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये भक्ति करना ठीक है या नहीं है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ये आवरणात्मिका शक्ति उसके ऊपर हावी हो रही होती है। तो उसको जोर जोर से भगवान का नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तो ये ऐसा नहीं है कि माया हतरत ज्ञानम कोई 4,000 के लोग हैं वो हम नहीं है, हम भी इन चारों में से हैं। कभी कभी जब हम तमोगुण में होते हैं तो हम आसुरी होते हैं, रजोगुण में होते हैं तो हम आसुरी होते हैं, सत्वगुण में हम रहते ही कब है, जब थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं या फिर जब कथा श्रवण करते हैं या कथा प्रवचन करते हैं तब हमें लगता है हम थोड़ा सत्वगुण का टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का, अदरवाइज ज्यादा समय तो क्रोध में, भूख लग रही होती है तो देखते नहीं पास में डिवोटी खड़ा है हरे कृष्णा बोलना है मेरा पेट भर जाए पहले, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो हम भी माया अपराध ज्ञान है भगवान का, आप देखिए भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है, जब जप करते हैं तो उस समय हम कहते हैं कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, तो हमें कहां भरोसा है कि भगवान है, अगर होता तो फिर हम ध्यान पूर्वक जप करते, इतने सेमिनार चलते हैं इतने सेमिनार चलते हैं लेकिन फिर भी हमारा ध्यान पूर्वक जप ही नहीं होता। तो इसका मतलब माया अपराध ज्ञान के पार्ट में हम भी हैं, ये नहीं है 4,000 के लोग वो अलग हैं हम लोग तो अलग हैं, नहीं हम भी उसी में हैं, हम भी माया के जो आवरणात्मिका शक्ति उसने घेर रखा है, हम समझ ही नहीं रहे कि कृष्णा भगवान है, हम जब बोल रहे हैं हरे कृष्णा तो मतलब भगवान है, फेथ नहीं है हमारा, विश्वास नहीं है। तो इसलिए विश्वास होना बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए कहते हैं जो 9 सीढ़ियां हैं प्रेम भगवान के पाने का, उसका पहली सीढ़ी है आदो श्रद्धा ततो साधु संग, भक्तों का संग तो बाद में, अगर संग करेंगे और फेथ ही नहीं है विश्वास ही नहीं है तो फिर संग का क्या फल मिलेगा। तो इसलिए पहला फेथ, जैसे एक साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे उनकी कथा आती है, जिन गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं, वो भगवान नरसिंह की पूजा करते थे बहुत ध्यान पूर्वक, हमेशा नरसिंह भगवान का चिंतन करना। तो एक बार एक डाकू था वो शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था, तो देखा गया है क्योंकि शिव पुराण भी तामस पुराण है, तो इस प्रकार से जो लोग ऐसा नहीं कि शिव जी भी तामसिक है, शिव जी तो वैष्णव नाम यथाम शंभु, लेकिन कुछ लोग उनका जो पूजा आदि करते हैं क्योंकि उनको भूतनाथ भी बोला जाता है इसलिए शमशान आदि में उनको विराजमान किया जाता है, कि वो इतने पावरफुल वैष्णव है कि वो ऐसे धूर्त भूत प्रेतों को भी भक्त बना सकते हैं, है ना। तो आप ये देखिए इसलिए शिव जी जो है वो तामसिक नहीं है लेकिन उनकी पूजा करने वाले अधिकतर तामसिक लोग देखे गए। तो वो जो था वो भी तामसिक था और बहुत ज्यादा पूजा करता था, जैसे रावण वो भी भगवान शिव की पूजा करता था लेकिन उसके बाद तामसिक था। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए वो डाकू जो था वो तामसिक था और शिव जी की पूजा करता था लेकिन एक बार बुखार आ गया उसको और उससे पूजा हो ही नहीं रही थी, पानी नहीं चढ़ा पा रहा, लेटा हुआ है, तो उसको लगा कि अपवित्रता की स्थिति में मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकता, उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं क्या करूं, किसी को बुला के लाता हूं पूजा करने के लिए। तो ब्राह्मण, उसे पता था मेरे ही जंगल में रहता है, उसको बुला लाता हूं। तो ब्राह्मण को लेके आए और बोला चलो शिव की पूजा करो। तो बोला मैं शिव जी का उपासक नहीं हूं, मुझे मंत्र आदि नहीं आते। तो बोला अच्छा मुझसे जुबान लड़ाते हो, चलो पूजा कर जबरदस्ती। तो बेचारा ब्राह्मण तो विनम्र होते हैं, वैसे भी सत्वगुणी भोजन खाते तो दिनहीन होते हैं, और डाकू तो तामसी भोजन खाता था, मांसाहार सेवन करता था, हष्ट पुष्ट था। तो उसने जबरदस्ती पकड़ कर शिवलिंग के आगे बैठा दिया, चलो पूजा करो। तो वो पूजा करने लगे, आग जोड़ के बोलने लगे, नमस्ते नरसिंहाया। अपने नमस्ते नरसिंहा, तुम समझ रहे हो मंत्र बोल रहा है ना, शिव जी के मंत्र तो नहीं। और समझ गए तो त्रोस पूजा करता था, थोड़ा बहुत सुना था उसने, बोला ये शिव जी का उपासक नहीं है मंत्र, बोला गलत मंत्र बोल रहे हो, सही से बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, भगवान की बात है, भगवान बचा लो, कहां फंस गया। तो उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल के बोला कि अगर अब तुमने शिव जी की मंत्र नहीं पढ़े ना, अभी तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। अभी तो क्या भगवान को और पुकारने लगे, नरसिंह आपके शरण में आता हूं। और शिवलिंग के अंदर उनको नरसिंह का दर्शन होने लगा। फिर उन्होंने जब बोला केशव धृता नरहरि रूपा केशव, जो भगवान नरसिंह का रूप धरकर आते हैं, जैसे ही उच्चारण किया वो शिवलिंग बताते हैं फट गया और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने आकर उस डाकू के हाथ से तलवार छीनी और फिर जैसे हिरण्यकश्यप को मारा था, एक पंच मारा उसको और मंदिर के बाहर निवेश कर दिया और ब्राह्मण को मुक्त करा दिया उसके चंगुल से। तो आप देखिए, हम बताते हैं वो विग्रह आज भी साउथ इंडिया में, मैंने देखा नहीं सुना है कथा में कहाँ है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है, फेथ है भगवान के ऊपर, फेथ होना चाहिए। लोग तो अभी नवरात्र आए थे तो लोग फोन करके पूछते थे पूजी क्या हम अष्टमी बना सकते हैं, कंजन पूजा कर सकते हैं, अभी हमें 2 साल हो गए हरे कृष्ण जपते हुए, 3 साल हो गए क्या ये कर सकते हैं, देवी नाराजपनी वजह से। तो इस तरह के प्रश्न वही लोग पूछते हैं जिनका फेथ अभी समझे नहीं कि जो बीज है कृष्ण नाम का ना, इसी में सब कुछ विराजमान है, जरूरत नहीं है और किसी चीज को करने की। आप पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, भगवान का नाम सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बुद्धि लड़ाते रहते हैं। जैसे एक जंगल में क्या था, एक कुत्ता ना एक बार एक हड्डी चबा रहा था, तो बेचारा इतने टेस्ट में मग्न था, इतना टेस्ट में मग्न था और भूल गया कि यहाँ पर, यहाँ का राजा कौन है, शेर है। और वहां से शेर घूमता घूमता आ गया और देखा उसने एरिया में कुत्ता और वो भी हड्डी खा रहा मजे से, सल्यूट नहीं मारा कुछ नहीं किया। तो बेचारे उस शेर ने ना जैसे धाड़ा ना, तो कुत्ते के देखो कितना दिमाग चला उसका, तो उसने दिमाग चला कर बोला वाह क्या शेर था, और हड्डी को चाटने लगा फिर से। तो शेर ने सुना क्या शेर था, मतलब क्या है ये शेर को चबा डाला। बड़ा घबरा गया वो, बोला ये तो बड़ा खतरनाक है, ये नॉर्मल कुत्ता नहीं है, कुछ अलग ब्रीड है जो शेर को खा जाती है, मुझे पता नहीं है। तो बेचारा यू टर्न मारा जाने लगा, तो ऊपर एक बंदर बैठ के देख रहा था कि इसने तो किसी छोटे जानवर को खा रहा है, हाँ शेर बोल दिया और बेचारा शेर जो है वो चला गया। तो जब हमारा शेर ने ऊपर देखा क्यों हंसता है तू, तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी हंस रहा हूँ कि देखो तुम्हें कुत्ते ने पागल बना दिया। क्यों पागल बनाया, क्योंकि इसने कहा कि ये शेर की हड्डी चबा रहा है और आप कंफ्यूज होकर चले गए। बोला अच्छा मुझे ये लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये कलयुग का कुत्ता है, ये झूठ बोल रहा है। तो उसने ना वापस यू टर्न मारा, तो बंदर बोला कि मैं ले चलता हूँ आपको, मैं ले चलता हूँ, मैं स्थापित करूंगा इस बात को कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो उसने कहा अच्छा कह रहा चलो चलो तो मेरी पीठ पे बैठ जाओ। अभी दोनों विपरीत, शेर बंदर को भी खा सकता था, कहा तो पीठ पे बैठ जाओ, अभी कुत्ते को बताते हैं। और शेर के ऊपर बंदर बैठ गया जाने लगे। अभी कुत्ता हड्डी का लास्ट पार्ट खा ही रहा था, चूस रहा था, तो उसने देखा फिर से आ गया, हो शेर आ गया, क्या बोलूं, फंस गया, आप तो बोल नहीं सकता, ये बंदर जानता है, ये बंदर लेकर आया है। तो सोचने लगा, वैज्ञानिक स्थापित करते हैं अलग अलग चीजों को कि भगवान नहीं है। तो उसने भी अपनी बुद्धि लगाई और बोला बंदर को भेजे में बड़ी देर हो गई, अभी तक शेर को लेके नहीं आया। बंदर को भेजे हुए इतनी देर हो गई, शेर को लेके गया है। बंदर को बोला नीचे उतर के चौड़ा उसको। हाँ, तो इस तरह से देखो कितना कितना दिमाग लगाते हैं हम। इस तरह से वैज्ञानिक लोग भी हो गए, या माया पूरा ज्ञान हम जीव मिथ्या अहंकार को स्थापित करने के लिए भगवान नहीं है। अनेकों अनेकों प्रकार का दिमाग लगाते रहते हैं, है ना। तो हम यही समाप्त करेंगे, बहुत कुछ अभी बोलने के लिए श्लोक के ऊपर। लेकिन आज शरद रस यात्रा महोत्सव भी है, शरद पूर्णिमा कार्तिक का शुरुआत है। आज के दिन भगवान रास लीला करते हैं अपनी रास। हम रास पंच अध्याय भागवतम की आत्मा बताया गया है, वो दसवें स्कंद के बीच में आता है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। लोग बोलते हैं कि भगवान उन्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं डायरेक्ट अगर हम दसवें स्कंद को रास अध्याय पढ़ने लग जाएंगे तो हम अपराध करेंगे, इसलिए उसे पढ़ने या सुनने के लिए मना किया जाता है। इसलिए हमारे प्रवचनों में रास लीला का वर्णन बहुत कम होता है। लेकिन बाहर के जो अब जैसे बंदर है या शेर है, वो अलग अलग प्रकार की लीलाओं से ही शुरू करते हैं। कथा जिस पे चल रही है कृष्ण लीला, रास लीला, बस शुरू वाली पहले टॉपिक ही रास लीला। तुम कौन हो पता नहीं, खुद का कैरेक्टर पूरा ढीला, लेकिन चर्चा करेंगे रास लीला। तो इस तरह से हमें इन सबको नहीं सुनना चाहिए, हमको सुनना है किसको, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, शास्त्रों से। प्रथम स्कंद से शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10 में जाकर भगवान की बाल लीला, पौगंड लीला, फिर जाकर कौमर लीला, फिर युवा लीला में रास लीला का वर्णन जब हम सुनेंगे तब तक हम इतने शुद्ध हो चुके होंगे कि हम समझ पाएंगे कि काम में और भगवान की लीलाओं में कितना भेद होता है। जिसको हम भौतिक स्तर पर समझते हैं वो चीज है ही नहीं। तो इस तरह समझने के लिए हमें भक्तों के संग में बिल्कुल धीरे 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 ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट रास लीला पे नहीं जाना चाहिए। तो आज के दिन भगवान शरदीय रास यात्रा करते हैं अपनी शरद की पूर्णिमा में, तो इसलिए कुछ लोग खीर बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान को ऑफर करते हैं और कहते हैं चांदनी में रखी हुई खीर जो खाए वो व्यक्ति के ऊपर कृपा मिलती है। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन मेन है दीप दान करना। तो आज से शाम को दीप दान शुरू होगा, कार्तिक में पूरा महीना दीप दान किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को दीप दान करना चाहिए, मंदिर में स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है दीप दान करने के लिए। तो एक व्यक्ति उनसे पूछ रहे थे अभी पीछे एक जगह लेक्चर दे रहे थे कार्तिक के ऊपर, तो बोलते हैं कि दीप दान क्यों करते हैं आप लोग, इसका क्या मतलब है। अरे शास्त्र में वर्णन है कि कोई व्यक्ति एक दीप दान करता है तो उसे 10,000 गाय दान देने का फल प्राप्त होता है एक दिए से। तो वो बोलते हैं कि मिट्टी का दिए क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप और भी दिए दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई वो परेशानी नहीं है, आपके पास अगर सोने का दिया दान करने की कृपा है तो आप आओ रोज हमारे मंदिर में एक सोने का दिया दान करो, हम तो खुश होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें डोनेशन आ जाएगा मंदिर। तो बोला अच्छा अच्छा, इसलिए आप हमसे ही लेंगे घर का, और क्या, मिट्टी का तो हम अरेंज कर सकते हैं लेकिन सोने के दिया आप लोगों के लिए हम क्यों अरेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान का दिया दान कर सकता है, जरूरी नहीं है कि अमीर होने का वही दान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान को दीप दान कर सकता है। और अगर इतना पदम पुराण में आता है कि अगर व्यक्ति के पास दीप खरीदने के पैसे नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी बेच करके दिए खरीदने चाहिए, लेकिन दीप दान जरूर करना चाहिए। और अगर वो भी नहीं कर सकता कि भाई प्रॉपर्टी में इतना ही नहीं है कि वो दिया खरीद सके, तो किसी ने दिया जलाकर अगर बाहर रखा है और वो बुझने वाला है तो उसको अगर बुझने से रोक सकता है तो उसको भी उतनी कृपा मिलेगी जिसको जिसको दीप दान। फिर वो पूछने लगे कि नहीं वो समझ में आ गया ये सब, तो लेकिन आप ऐसे ऐसे क्यों घुमाते हो, इसका क्या मतलब। तो अभी सोचने वाली बात ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं, तो उनको बताया गया कि ये जो मंदिर है ना और लाइटें बंद कर देते हो इसका क्या मतलब है। तो बोले कि जब ये दीपदान का उत्सव शुरू हुआ जिस समय में, उस समय में लाइटें थोड़ी होती थी, ट्यूब लाइट, फ्लड लाइट, स्पॉट लाइट ये सब नहीं था, तो उस समय सिर्फ दीप होता था, दिया जो होता था, दिया दिया नहीं दिया तो नहीं दिया लेकिन हमें देना चाहिए। तो दिया जो है वो भगवान के सामने लगाते थे और फिर फोकस करते थे भगवान को, जैसे फोकस लाइट डाली जाती है ना जो मिनिस्टर आते हैं स्टेज पे, फोकस लाइट ठक, या फिर सेलिब्रिटी ठक, ऐसे हम भी ऐसे लाइट लेके घुमाते हैं भगवान का मुख का दर्शन, चरण का दर्शन, नाभि का दर्शन, पूरे भगवान का दर्शन, उस दिए की रोशनी के द्वारा दर्शन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का फोकस आप होने चाहिए, हमारे जीवन का केंद्र आप होने चाहिए, इसलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो पहले तो रोज ही दर्शन होता था, ऐसे ही दिखते नहीं थे अंधेरे में भगवान, शाम को 7:30, 7:30, 6:30 अंधेरा हो जाता सर्दियों में, तो भगवान को ऐसे करके देखते थे, हाँ वाह क्या सुंदर मुख है, वाह क्या सुंदर चरण है भगवान के, इसलिए उस फील को लाने के लिए लाइटें बंद कर दी जाती है और फिर बोला जाता है अभी आप इधर उधर बहुत देख लिया, अब भगवान को देखो, ध्यान पूर्वक दिए के द्वारा भगवान को देखना चाहिए। इस तरह से उनको बताया कि दिया हमें जान करना चाहिए और मुरारी गुप्ता तिरुभाव दिवस भी है आज, तो मुरारी गुप्ता जी के बारे में बताते हैं कि ये हनुमान जी का अवतार है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, और कितना फेथ था इनका भगवान के ऊपर और कि ये भगवान राम का ही हमेशा भजन करना चाहते थे। तो एक बार महाप्रभु ने इनको ऑर्डर दिया कि अरे इतना सब कुछ जाना उसके बाद भी आप कृष्ण का नाम नहीं लेते हो, भगवान राम 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 करते रहते हो, अगर आप कृष्ण का नाम नहीं लोगे तो आप मेरे संग मत करो, पढ़ लो। तो ऐसे भगवान ने उनको ऑर्डर दिया, भगवान जानते थे चेक करना चाहते थे। तो उन्होंने बड़ा कंफ्यूज हुए कि अभी करूं क्या मैं, अगर मैं राम का नाम ना लूं तो मेरे हृदय के प्राण धन सीता राम लक्ष्मण मुझसे दूर हो जाएंगे, और अगर मैं कृष्ण नाम ना लूं तो जो कलयुग रूपी भगवान गौरंग महाप्रभु इनका संग मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत ही कंफ्यूजन में थे, और वैसा उनकी इच्छा हुई कि अभी मैं अपना जीवन समाप्त कर लेता हूँ, शरीर नहीं रहेगा तो फिर ना इधर का ना उधर का, बस जहाँ जाना चला जाऊंगा। तो महाप्रभु ने आकर उनको बोला, तो फिर वो महाप्रभु के पास जाते हैं और अपना कंफ्यूजन व्यक्त करते हैं कि इस तरह से है तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे इससे कि तुम भगवान राम के प्रति इतने निष्ठावान हो कि तुम भगवान कृष्ण का नाम लेने नहीं चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कृष्ण का नाम छोड़ के राम का नाम लेने लगे, राम और कृष्ण को भेद दिए इसलिए हमारे अल्टर में लेफ्ट साइड कृष्ण है राइट साइड रामचंद्र जी है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वरम परम कृष्ण, कृष्ण अवतार देते हैं रामचंद्र जी अवतार लेते हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं। अगर आप राम की भक्ति करते हैं तो अंत काल में साकेत धाम को जाएंगे अयोध्या धाम, अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अंत काल में आप गोलोक धाम जाएंगे, लेकिन जाएंगे वैकुंठ लोकों में जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। तो जो मुरारी गुप्त है वो हनुमान जी का अवतार बताए गए, इसलिए वो राम भक्त निष्ठावान हनुमान जी के भक्त है हनुमान जी है, तो इसलिए हमें उनका ध्यान करना चाहिए और हमें भी अपनी कृष्ण भक्ति पर निष्ठावान हो जाना चाहिए। अभी कोई बोले आप हरे कृष्णा तो कर लिया, अब आप लोग ना नया मंत्र लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है हमारे गुरु जी ने दिया, आपको 16 अक्षर का मंत्र लेते हो अभी ये 12 में खत्म हो जाएगा, छोटा है आपको, आपके 16 के 32 मन हो जाएंगे, तो आपने ये ले लो मंत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं बस जो मंत्र मिला है वही हम जपेंगे और कोई मंत्र हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।